नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट और ये वक्त है जानने का खेल जगत की खबरें। बेंगलुरु में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 10 रन से हराने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जियो सिनेमा से बातचीत के दौरान वर्ल्ड कप फाइनल की हार को याद करते हुए फिर से दुखी नजर आए। रोहित ने कहा, मैं उस हार के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता क्योंकि उस हार ने मुझे और टीम को काफी दुखी किया था। रोहित ने बताया कि मेरे लिए वनडे वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा मायने रखता है। रोहित ने कहा कि हम बचपन से ही 50-50 ओवर वर्ल्ड कप देखकर बड़े हुए हैं और हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो विश्व कप खेलना और उसे जीतना। रोहित शर्मा ने कहा कि मेरे लिए वनडे वर्ल्ड कप सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है और ऐसा नहीं है कि मैं T20 विश्व कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को कम महत्व देता हूं, लेकिन जब वनडे वर्ल्ड कप भारत में होता है तो बहुत बड़ा मौका होता है, लेकिन हम निराश हैं कि हम उसे जीत नहीं पाए। सुमित नागल ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के पुरुष एकल में दूसरे दौर में प्रवेश किया। उन्होंने 27वीं रैंकिंग वाले कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को सीधे सेटों में हराकर इतिहास रच दिया। नागल की जीत के साथ ही 35 साल में पहली बार किसी भारतीय ने ग्रैंड स्लैम एकल में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया है। इससे पहले 1989 में रमेश कृष्णन ने मैट विलेंडर को हराया था, जो उस समय दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी थे और ऑस्ट्रेलियाई ओपन विजेता भी थे। इस टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर को 31वीं वरीयता मिली है। हरियाणा के झज्जर के 26 साल के सुमित नागल ने अपने टेनिस करियर में 4 वर्षों में बहुत तकलीफें उठाई हैं। उन्हें इस दौरान कोहले की सर्जरी करानी पड़ी, कोविड से जूझना पड़ा और अपनी आंतरिक परेशानियों से जूझना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में मजबूत पकड़ बनाई हुई है। ट्रेविस हेड की शतकीय पारी की मदद से उन्हें 95 रन की बढ़त मिली। वेस्टइंडीज के लिए डेब्यूटेंट शामार जोसेफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। उन्होंने अपने टेस्ट करियर की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ का विकेट लिया था। टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार 18 जनवरी को पहले ही ओवर में कैमरन ग्रीन को पवेलियन भेजा। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 188 रन पर आउट हो गई थी। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 243 रन बनाए। एक समय कंगारू टीम 168 रन पर 6 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। ट्रेविस हेड और पुछल्ले बल्लेबाजों ने टीम को संकट से उबारा और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने मिचेल स्टार्क के साथ 7वें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की। इसके बाद पैट कमिंस के साथ 33 रन की साझेदारी की। पेरिस ओलंपिक से पहले भारतीय रेसलर्स की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और तदर्थ समिति के बीच पिसते जा रहे हैं। 21 दिसंबर को हुए चुनाव के बाद रेसलिंग फेडरेशन के नए पैनल का चयन हुआ। हालांकि 2 दिन बाद ही खेल मंत्रालय ने इसे निलंबित कर दिया। मंत्रालय का कहना था कि फेडरेशन ने नियमों का पालन नहीं किया और फेडरेशन का काम देखने के लिए 3 दिवसीय संजय सिंह की अध्यक्षता वाले पैनल ने इस निलंबन को मानने से इनकार कर दिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 29 से 31 जनवरी के बीच पुणे में नेशनल चैंपियनशिप के आयोजन का ऐलान किया था। संजय सिंह ने दावा किया था कि वो प्रदेश संघों ने कहा है कि पुणे में WFI द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराए जाने पर वो टीमें भेजेंगे और जयपुर में नहीं भेजेंगे। वहीं बुधवार को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त तदर्थ पैनल ने कहा कि उसके द्वारा कराए जाने वाले टूर्नामेंट को ही वास्तविक माना जाएगा। टीम इंडिया को लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में लंबे समय से युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे फिनिशर की तलाश थी। रिंकू सिंह के बाद ऐसा लग रहा है कि टीम की तलाश खत्म हो गई है। अपने छोटे से करियर में ही रिंकू ने दिखा दिया है कि उनमें क्या क्षमता है। वो अब तक 15 T20 मैच खेले हैं। 11 में से 7 पारी में वो नॉट आउट रहे हैं। उनकी औसत 89 की है और स्ट्राइक रेट 176.24 का है। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 में रिंकू सिंह की बल्लेबाजी 5वें ओवर में ही आ गई थी। रिंकू ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर 190 रन की साझेदारी की। उन्होंने परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी की। रिंकू का ये प्रदर्शन देखकर लगता है कि वो T20 वर्ल्ड कप में जरूर चुने जाएंगे और प्लेइंग 11 में भी होंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।